تمام، الحمد لله وكفى وسلم على عباد الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها، وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. اتبع ما أوحي إليك من ربك، لا إله إلا هو، وأعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما أشركوا، وما جعلناك عليهم حفيظا، وما أنت عليهم بوكيل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. بين آيات کی تفسیر ہم سورہ انعام کی پڑھ رہے ہیں اس کلاس کے اندر، جو ہماری پیر کی صبح کو ہوتی ہے خواتین کی آڈینس کے لیے، اور ہماری جو کتاب ہے ریفرنس کے لیے وہ ہے معرف القرآن جلد بڑھتی. تو اس میں سے ہم ان آیات یعنی آیت نمبر 103 سے لے کر کے 107 تک کے معارف و مسائل پڑھ رہے تھے. اور پچھلی کلاس میں ہم نے صفحہ نمبر 412 تک پڑھ کے مکمل کیا تھا، اگرچہ کہ جمعہ کے درس میں بھی جو ایک مختلف قسم کا مجمع ہوتا ہے، فیملی اورینٹڈ مجمع ہوتا ہے، آن لائن بھی اور آن سائٹ بھی، اس میں مرد بھی ہوتے ہیں خواتین بھی ہوتی ہیں، تو اس میں بھی ہم نے ان بات کو مسائل کو کچھ پڑھا تھا، لیکن جو اس کلاس کی ترتیب ہے اس کے حساب سے بھی اس کو دوبارہ پڑھ لیں یہ چند چیزوں کو. 412 صفحہ جو کہ آپ کے سامنے دوسری شکل میں یہاں پر سکرین پر ڈسپلیڈ بھی ہے، تو اس میں بات یہاں تک پہنچ گئی تھی ان آیات کے کہ یہ جو دوسری صفت حق تعالی شانہو کی اس آیت میں بیان فرمائی ہے کہ اس کی نظر ساری کائنات پر محیط ہے، دنیا کا کوئی ذرہ اس کی نظر سے چھپا ہوا نہیں ہے. یہ علم مطلق اور احاطہ علمی بھی حق تعالی شانہو کی ہی خصوصیت ہے. اس کے سوا کسی مخلوق کو تمام اشیاء کائنات اور ذرہ ذرہ کا علم نہ کبھی حاصل ہوا نہ ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ مخصوص صفت ہے رب العزت جل شانہو کی. تو یہ جو تقریباً 3 صفحات تک جو حضرت نے معارف مسائل بیان فرمائے، تو یہ صرف اس کے اوپر تھے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. صرف پہلی آیت یعنی آیت نمبر 103 جو ہے اس کے پہلے 2 حصوں پر مشتمل تھے، اور جو تیسرا حصہ ہے وہو اللطیف الخبیر، اس کی بات تو اب شروع ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ اتنی ساری باتیں جو حضرت مفتی شفیع رحمتہ اللہ علیہ نے صرف ان چند الفاظ کے اوپر بیان فرمائی، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ جو ہمارے جیسے کند ذہن لوگ ہوتے ہیں نا، کند ذہن سمجھتے ہیں نا، کند کس کو کہتے ہیں؟ آپ کے گھر میں الحمدللہ کچن ہوتا ہے، کچن کے اندر چھری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو چھری جو ہوتی ہے اس سے آپ اگر گوشت کاٹیں تو وہ اگر تیز چھری ہو نا تو پھر تو گوشت کٹ جاتا ہے، لیکن اگر چھری تیز نہ ہو بلکہ کند ہو تو گوشت نہیں کاٹتا. ٹھیک ہے، تو کند چھری جو ہوتی ہے نا اس سے کوئی جو مشکل چیز ہوتی ہے نا وہ نہیں کٹتی، کند چھری اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر اس کو شارپ کرنا پڑتا ہے، جب شارپ ہوتی ہے تو پھر اس سے کام ہوتا ہے. تو یہی لفظ کند جو ہے یہ پھر ذہن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو کچھ ذہن ہوتے ہیں، انگریزی میں بھی کہتے ہیں نا شارپ، شارپ مائنڈز ہوتے ہیں، تو وہ شارپ مائنڈز جو ہوتے ہیں जो सही मानों में शार्प होते हैं, बुरे मानों में शार्प नहीं बल्कि सही मानों में शार्प होते हैं, वो बात को जल्दी समझ लेते हैं और कम अल्फाज में ही उनको बात समझ में आ जाती है। लेकिन जो कुंद जहन होते हैं तो वो बात जल्दी नहीं समझ पाते हैं, उनको जो है वो बड़े सारे बहुत सारे अल्फाज बोल करके फिर बात समझानी पड़ती है, तब कहीं जा करके कुछ बात समझ में आती है। ठीक है, तो सहाबाए कराम जो थे ना, तो वो माशाल्लाह तेज जहन के थे, शार्प जहन के थे। ठीक है, उनकी अकलें जो थी वो बहुत ही तेज थी, तो उनको जो है ना वो कम अल्फाज में बात समझ में आ जाती थी। अगरचे के कभी नबी अलैहिस्सलाम कुरान की कुछ आयात की तफसीर बयान करते थे, ठीक है ना, सिर्फ कुरान मजीद के अल्फाज से सहाबा को भी बात समझ में नहीं आती थी, बल्कि कुछ एक्स्ट्रा तफसीर नबी अलैहिस्सलाम भी बयान कर दिया करते थे, लेकिन वो बहुत मुख्तसर होती थी और कभी कभी होती थी, हमेशा नहीं होती थी, तो सहाबा फिर भी समझ जाते थे बात को। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे जमाना नबी अलैहिस्सलाम से दूर होता गया, खैर के जमाने से हम दूर होते गए इंसान, तो इंसानों की ये जो अकल है ना, ये दीनी एतबार से कुंद होती गई, दुनियावी एतबार से तो तेज होती गई, यानी अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के एतबार से तो तेज होती गई, दुनियावी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए बड़ी तेज हो गई, और फिर बड़ी दुनियावी ख्वाहिशात को हासिल करने के लिए एक से एक जो है वो तमाशे बनाने शुरू किए लोगों ने, और इजादात करी, साइंसी इजादात करी, और न जाने क्या क्या कुछ बना लिया है ना, सिक्स फ्लैग्स बना लिए तो डिज्नी बना लिया, और मूवीज बना ली तो हॉलीवुड बना लिया, तो बॉलीवुड बना लिया। ये सब कैसे बनाया इंसान ने? ये जहन से बनाया, अपनी अकल को इस्तेमाल करते हुए बनाया, लेकिन ये अकल की जो शार्पनेस थी ये सिर्फ नफसानी ख्वाहिशात को पूरी करने के लिए थी, नफसानी ख्वाहिशात को पूरी करने के लिए ये अकल की शार्पनेस इस्तेमाल हुई। लेकिन जो रूहानी ख्वाहिशात होती हैं, रूहानी ख्वाहिशात किन ख्वाहिशात को कहते हैं? जो रूह की ख्वाहिश हो, ठीक है, यानी अल्लाह का कुर्ब नसीब हो जाए, ये रूह की ख्वाहिश होती है। जन्नत नसीब हो जाए, ये रूह की ख्वाहिश होती है ना? और इंसान का जो दिल है, नफ्स नहीं, इंसान का दिल जो है वो मुतमइन हो जाए, ये रूह की ख्वाहिश होती है। तो ये रूहानी ख्वाहिशात कहलाती हैं। रूहानी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए अकल कुंद हो गई, रूहानी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए अकलें कुंद हो गई, और नफसानी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए अकलें तेज हो गई। तो कैसे कैसे इजादात करनी, कैसे कैसे जो है वो खेल इजाद कर लिए, ठीक है, ताकि नफसानी ख्वाहिशात पूरी हो जाए। तो ये जो कुन जहन हो गए, कुन जहन से यहां पर मुराद क्या कि रूहानी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए जिस जहन की जरूरत होती है वो कुंद हो गए, तो अब जो है वो बात समझाने के लिए बहुत ज्यादा तफसील की जरूरत पड़ती है ऐसे कुंद जहनों को। ठीक है, हमारे आपके जैसे, मैं अपने आप को इससे एग्जेम्प्ट नहीं कर रहा, ठीक है, तो मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह ने देखें के खाली ला तुदरकुल अबसार वहुवा युदरकुल अबसार के ऊपर कितनी सारी तफसील बयान करी। ठीक है, और उसके बाद फिर आगे चले कि इसके बाद इरशाद फरमाया अल्लाह ताला ने, क्या फरमाया, वहुवल लतीफुल खबीर। तो अब इसकी तफसील बयान हो रही है कि लतीफ जो है वो अरबी लुगत के एतबार से, डिक्शनरी के एतबार से दो मानी में इस्तेमाल किया जाता है, एक मानी मेहरबान और दूसरे बमुकाबिल कसीफ। ठीक है, कसीफ जो है वो थिक किस्म की चीज को कहते हैं ना, या बल्कि गदला, उसके लिए भी कसाफत कसीफ का लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो जो बिल्कुल क्लियर होता है ना, उसके लिए लतीफ का लफ्ज इस्तेमाल कर, तो बमानी यानी लतीफ के मानी जो है वो मेहरबान के हुए, और एक बहुत ही साफ शफाफ क्लियर उसके भी मानी हुए, यानी वो चीज जो हवास के जरिए से महसूस और मालूम नहीं की जा सकती। ठीक है, यानी इतनी थिन किस्म की चीज है, इतनी बारीक किस्म की चीज है कि हम अपने फाइव सेंसेस से उसको परसीव ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो लतीफ के ये मानी बयान किए कि लतीफ इस चीज को कहते हैं, रूह भी जो है वो इंसान की लतीफ है, और रूह का जो जो सोर्स है, ठीक है, वो क्या है, रूह का सोर्स है वो क्या है, अल्लाह रब्बुल इज्जत। जैसे कुरान मजीद के अंदर है ना कि यसअलूनका अनिर रूह, कि ये लोग आपसे सवाल करते हैं रूह के बारे में, यसअलूनका अनिर रूह, तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं, कुल कह दीजिए इनसे, अर रूह मिन अम्र रब्बी, के रूह तो मेरे रब का अमर है, ठीक है, मेरे रब का हुक्म है, बस उससे जो है वो रूह आती है, उससे रूह जो है वो निकल जाती है, बाकी इसके अंदर कोई जिस्मानी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, कि रूह जो है वो किसी पैकेट में प्लास्टिक के पैकेट के अंदर रख करके जो है वो ऊपर से नीचे आ रही होती है, या रूह जो है वो उसका कोई फिजिकल बॉडी होती है कि वो ऊपर से नीचे अर्श जो है वो नीचे जमीन तक आती है और फिर जो है वो इंसान के जिस्म के अंदर दाखिल होती है तो वो जिंदा हो जाता है, नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने इसके लिए कोई फिजिकल बॉडी नहीं रखी, कोई फिजिकल व्हीकल नहीं रखा, ठीक है, कोई सवारी नहीं रखी, मादी किस्म की सवारी नहीं रखी, बस कुन का हुक्म देते हैं, हो जा, और बस रूह जो है ना वो एक गैर महसूस अंदाज में ट्रेवल करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है, ठीक है। आलमुल अरवाह जो कि ऊपर कहीं पर है आसमानों के अंदर, वहां से रूह जो है वो यहाँ पे जमीन पे पहुंचती है और इंसान के जिस्म में दाखिल हो जाती है, ठीक है, और जब वही इंसान सो जाता है तो फिर से जो ये है ये रूह बाहर निकल आती है और फिर जो है वो सफर करना शुरू कर देती है और आसमानों तक भी पहुंच जाती है ये रूह सफर करते करते, और फिर वो इंसान जागता है तो कितनी तेजी के साथ ये रूह जो है वो आसमानों से वापस आकर के उसके जिस्म के अंदर दोबारा दाखिल हो जाती है, ठीक है, तो ये लतीफ है, ठीक है, अल्लाह ताला ने इसको लतीफ बनाया है तो उसके अंदर ऐसी फिर सलाहियतें रखी हुई है, ठीक है, तो ये कितनी बड़ी नेमत है ये रूह जो कि अल्लाह ताला ने हमें दी हुई है ना, यानी आप सोचे ना कि आपके पास कोई बड़ी सलाहियतों वाला कोई नौकर आ जाए आपके घर में, आपके घर में सलाहियतों से भरपूर किस्म का कोई नौकर आ जाए, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कोई रिसोर्स आ जाए आपके पास, ठीक है ना, तो वो कितनी बड़ी नेमत है ना, अब आप उससे क्या क्या काम ले सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर इतनी सलाहियतें हैं, इतनी इस्तेदाद है, आप उससे क्या क्या कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप कोई का कोई फायदा नहीं लेते उससे, ठीक है, आप उससे कोई काम नहीं लेते, आप उससे कोई फायदा नहीं उठाते, बल्कि आप उस नौकर को बिठा देते हैं, बैठे हो उधर खामोशी दे बैठे हो, ठीक है ना, और कुछ काम ना करो, बल्कि अक्सर तो ऐसा होता है कि नौकर जो है ना जो कि बहुत ज्यादा साहिब इस्तेदाद नौकर है, बहुत ज्यादा कुछ जो है वो आपके लिए कर सकता है, तो आप उसको खाली बिठा नहीं देते घर के अंदर कि भाई मैंने तुमसे कोई काम नहीं लेना तुम बैठ जाओ बस, ठीक है, बल्कि आप उसका खाना पीना भी बंद कर देते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, खाना पीना भी बंद कर देते हैं, उसको भूखों मारना शुरू कर देते हैं, ठीक है, अब वो नौकर जो है जब भूखों मर रहा होगा, ठीक है, भूखों मर रहा होगा तो फिर उसकी सलाहियतें और उसकी इस्तेदाद जो है वो खत्म नहीं हो जाएंगी, कम नहीं हो जाएंगी, मर नहीं जाएंगी, है ना, तो यही काम हम अपनी रूह के साथ करते हैं। कोई कह रहा होगा कि जी मैं भी तो बहुत पढ़ी लिखी हूं तो मुझसे काम क्यों नहीं लेते, मुझे बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन वही जो है ना वो अपने गरेबान में झांक करके देखें कि आपकी चंद छोटी मोटी सलाहियतों से कोई काम ना ले तो कितना बुरा लगता है, ठीक है, लेकिन आपके अपने पास जो अल्लाह ताला ने ये नेमत दी हुई है आपने उसको जो है ना वो बंद करके रखा हुआ है और उससे कोई काम नहीं ले रहे तो ये कितना बड़ा जुल्म है, कितना बड़ा ये जुल्म है, क्या क्या कुछ कर सकते हैं इससे, लेकिन फारिग बैठे हुए हैं, बिल्कुल इस तरह से क्या वो सस्पेंडेड किस्म के तरीके से बैठे हुए भाई, इस रूह से काम ले ना और इस रूह को खिलाएं पिलाएं, ठीक है ना, पहले तो जो मरियल हुई हुई है तो इसको कुछ खिलाएं पहले, और खिला पिला करके इसको थोड़ा सा जिंदा करें, ठीक है। दिले मुर्दा दिल नहीं है, इसे जिंदा कर दोबारा, कि यही है उम्मतों के मर्ज़े कोहन का चारा, ठीक है। तो उसको खिला पिला करके दोबारा से जिंदा करने की जरूरत है, और जब ये जिंदा हो जाएगी ना तो फिर उसे काम लेने की जरूरत है, ठीक है। तो फिर जिंदगी बिल्कुल भी जाया नहीं होगी, बल्कि इससे कितना ज्यादा हम फायदा उठा सकते हैं। तो ये हम अपनी रूह के साथ ये जुल्म कर रहे होते हैं, और बल्कि रूह के साथ क्या करते हैं, अपने साथ जुल्म कर रहे होते हैं, क्योंकि हम सिर्फ जिस्म तो नहीं है, हम हमारा जो हमारा जो वजूद है वो जिस्म और रूह दोनों का मजमुआ है, ठीक है। वो जिस्म से काम ले रहे हैं, जिस्म को खिला पिला रहे हैं, जिस्म की जो है वो बड़ी जरूरियात भी पूरी कर रहे हैं, ख्वाहिशात भी पूरी कर रहे हैं, लेकिन रूह को जो है ना वो ना ख्वाहिशात पूरी कर रहे हैं, ना जिस्म पूरी कर रहे हैं, ना जो है वो खिला पिला रहे हैं, और उसको जो है वो पालतू रखा हुआ है, ठीक है। शेर दोबारा समझा दें। शेर तो पहले आप सुन लें दोबारा से, एक दफा चले। दिले मुर्दा, जो मुर्दा दिल है ना वो दिल नहीं है, वो यानी मुर्दा दिल कोई दिल कहलाने के काबिल तो थोड़ी है। दिले मुर्दा दिल नहीं है, उसे जिंदा कर दोबारा, ठीक है। दिले मुर्दा को जिंदा करें आप, कैसे जिंदा करें, क्योंकि दिल जो है वो रूह का हिस्सा होता है, वो रूह का मुकाम होता है, ठीक है। कल्ब, एक्चुअली यहाँ पे लफ्ज कल्ब होना चाहिए, लेकिन उर्दू जुबान में इसको दिल भी कह देते हैं। तो दिले मुर्दा दिल नहीं है, इसे जिंदा कर दोबारा, कि यही है उम्मतों के, यानी जब उम्मतों का दिल जिंदा हो जाता है ना तो क्या होता है, मर्ज़े कोहन का चारा, ठीक है, कि उनका जो मर्ज होता है ना, सुस्ती काहिली का जो मर्ज में वो मुब्तला होती हैं, तो उसको दूर करने का कोई और चारा नहीं है, कोई और रास्ता नहीं है, सिवाय इसके कि उनके मुर्दा दिलों को जिंदा किया जाए, ठीक है। दिल मुर्दा दिल नहीं है, इसे जिंदा कर दोबारा, कि यही है उम्मतों के मर्ज़े कोहन का चारा, ठीक है। इसका मतलब ये भी है कि दिले मुर्दा को जिंदा किए बगैर अगर हम ये चाहें कि दिले मुर्दा के ऊपर पेंट कर दें, दिले मुर्दा के ऊपर पेंट कर दें, या दिले मुर्दा के ऊपर जो है वो चादरें चढ़ा दें, अच्छी अच्छी जो है वो डेकोरेशन कर दें दिले मुर्दा के ऊपर, है फूल फूल चिपका दें उसके ऊपर, और जो है वो उसको जबरदस्त किस्म का लिबास उड़ा दें, तो दिले मुर्दा जो है वो बड़ा अच्छा लगना शुरू हो जाएगा, कि भाई इसके ऊपर जो है ना आपने इतनी जबरदस्त किस्म की डेकोरेशन कर दी है, तो अब जब दिले मुर्दा पे इतनी अच्छी अच्छी डेकोरेशन कर दी, तो अब जो है ना वो हमारी उम्मत का जो मर्ज है वो दूर हो जाएगा। नहीं, शायर क्या कह रहा है, बल्कि शायर तो क्या, वो अल्लाह के नबी, अल्लाह के नबी की ही बात है जो कि शायर शेर में कह रहा है, वो क्या है कि नहीं, ये जो कॉस्मेटिक टचेस है ना जो तुम देने की कोशिश करे चले जा रहे हो ना अपने दिल को, इससे तुम्हारा तुम्हारी उम्मत के मर्ज का कोई चारा नहीं होगा, कोई जो है वो फायदा नहीं होगा, बल्कि इस दिले मुर्दा को तुम्हें जिंदा करना पड़ेगा, ठीक है। इसको जिंदा करना पड़ेगा, इसके बगैर कोई चारा नहीं है, ठीक है। ऊपर से चादरें चढ़ा करके और पत्तियां छावर करके और ये इस किस्म की हरकतें करके फायदा नहीं होने वाला है तुम्हें। तो अब इसका मतलब क्या है, दीनी लाइन से इसका मतलब क्या है, दिल को ये सब कर करा करके जिंदा करने, सॉरी, ये सब कर करा करके उसको फायदा नहीं होगा, बल्कि उसको जिंदा ही करना पड़ेगा, जिंदा किए बगैर मसला हल नहीं होगा। तो हाउ डू यू ट्रांसलेट दैट इन दीन, ये सवाल है। इस सवाल का आप जवाब दें तो फिर ये जो दो सवाल, दो सौ दो, एक सवाल का तो जवाब हो गया, पहले सवाल का फिर आज देखता है कि क्या कह रही है हजरत। इस कॉन्टेक्स्ट में स्लीप पैरालिसिस को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, स्लीप पैरालिसिस, भाई जब स्लीप, मैंने ये वेंसडे की क्लास का वैसे भी टॉपिक बन चुका है, जब वहां पहुंचेंगे ना तो फिर देखेंगे स्लीप पैरालिसिस, मुझे नहीं मालूम स्लीप पैरालिसिस क्या हो, ठीक है। तो जब पढ़ेंगे तो अगर मालूम होगा तो फिर आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, भी जवाब देगा कि दीनी जुबान में हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस, कि आप दिल को जिंदा करने के बजाय आप दिल के ऊपर जो है ना वो नक्काशी कर रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, तो पेंटिंग वेंडिंग वेंडिंग कर देने से तो मसला दूर नहीं होगा, दिल को तो जिंदा ही करना पड़ेगा। चले ठीक है, ये तो आपने बड़ा अच्छा काम किया, आपके सवाल का हमने तो जवाब दिया नहीं लेकिन आपने जवाब दे दिया, बहुत अच्छा, अल्लाह आपको ज्यादा खैर अता फरमाए। तो उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया कि सिर्फ कुछ रिचुअल्स से दिल नहीं सवरता, सिर्फ रिचुअल से दिल नहीं सवरता, नहीं सिर्फ रिचुअल से मर्ज दूर नहीं होता, ठीक है ना, दिल बजाहिर तो संवर जाएगा, जाहिरी तौर पर तो संवर जाएगा ना, बड़ा संवरा नजर आना शुरू हो जाएगा, लेकिन मसला दूर नहीं होगा इससे, बल्कि सोच को बदलना होगा। सोच को पहले बदलना होगा और फिर दिल को जिंदा भी करना होगा, यानी उसको रूहानी ग़िज़ा भी देनी होगी, अल्लाह का जिक्र भी करना होगा, और जो सोच को बदलने वाला इल्म है वो वाला इल्म भी हासिल करना हो। सिर्फ रिचुअलिस्टिक इल्म हासिल करने से या सिर्फ रिचुअलिस्टिक अमल करना शुरू कर देने से मसले दूर नहीं होंगे, बल्कि सोच की तब्दीली वाला इल्म हासिल करने से और इस दिल का जो मालिक है उसकी याद करने से दिल जिंदा होगा, और दिल जिंदा होने से उम्मत का मर्ज दूर होगा, ठीक है, ये इसका मतलब है। बाकी सवाल जवाब और भी आए, मैं 1 मिनट में भी देख लेते हैं। पहले उन्होंने सिर्फ आमाल की तरफ तवज्जो, जी रिचुअल्स को जो है वो अंग्रेजी में मतलब रिचुअल्स को अरबी में या उर्दू में आमाल कहा जाता है, सिर्फ चंद आमाल कर लेने से, ठीक है, दौड़े दौड़े ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं तो इल्म, और कौन सा वाला इल्म, सोच की तब्दीली वाला इल्म, वो इल्म हासिल करना होगा, और अल्लाह का जो है ना वो कसरत से जिक्र करना होगा, तब जाकर के ये दो पर हैं, ये दो पर हैं, इल्म और अमल, ठीक है, इल्म और जिक्र, सॉरी इल्म और जिक्र। हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह बानी तबलीगी जमा, उन्होंने भी क्या इस्लाह का जरिया बताया, इल्म और जिक्र, इससे जो है ना इस्लाह होती है। अच्छा इसके बाद इरशाद फरमाया, अच्छा ये लतीफ की बात हो गई, और फिर खबीर के मानी है बाखबर, मानी इस जुमले के ये हो गए कि अल्लाह ताला लतीफ है इसलिए हवास के जरिए उनका इदराक नहीं किया जा सकता, और खबीर इसलिए सारी कायनात का कोई जर्रा उनके इल्म व खबर से बाहर नहीं है, और अगर लतीफ के मानी इस जगह मेहरबान के लिए जाए तो इशारा इस तरफ होगा कि अल्लाह ताला अगरचे हमारे हर कौल व फेल बल्कि इरादे और ख्याल से भी बाखबर है, जिसका इक्तज़ा तो ये था, यानी जिसका तकाजा तो ये था कि हम हर गुनाह पर पकड़े जाया करते, मगर चूंकि वो लतीफ व मेहरबान भी हैं इसलिए हर गुनाह पर मुआखजा नहीं फरमाते, ठीक है। किसी शायर ने क्या खूब शेर कहा जिसको हमारे हजरत ने बाकायदा एक बयान में नकल किया और फिर उसके ऊपर पूरी किताब भी छपी, हमने किए गुनाह पर उसने न की पकड़, हमने किए गुनाह पर उसने न की पकड़, कितने बड़े हैं हौसले परवरदिगार के, कितने बड़े हैं हौसले परवरदिगार के, हम गुनाह करते हैं और वो एकदम से हमें पकड़ करके जहन्नुम में नहीं फेंक देता, कितना हौसला है हमारे परवरदगार का, कितना बर्दाश्त करता है वो हमें, ठीक है। कोई माँ हो ना, वो अपने बच्चे का हर लिहाज से जो है वो ख्याल करे, उसको खिलाए पिलाए, उसकी जरूरियात को पूरा करे, उसके जो उसको चीज चाहिए हो वो ला करके दे, ठीक है, तो उसकी मोहब्बत में कोई कसर ना उठाए। अब जब वो बच्चा उस माँ के साथ बदतमीजी करे तो क्या उस माँ का दिल नहीं टूटेगा, ठीक है, तो अगर माँ उसके ऊपर उसको सजा नहीं देती तो उस पर यही कहा जाएगा ना कि कितने हौसले वाली माँ है कि इसने तो अपने बच्चे की ख्याल रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन बच्चा जो है वो उसने बदतमीजी करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी, इसके साथ बेअदबी और इसको जो है वो रिजेक्ट करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन माँ ने इसको फिर भी सीने से लगाया हुआ है, फिर भी जो इसका काम चल रहा है, फिर भी इसको दे रही है, फिर भी इसका ख्याल रख रही है, तो कितना बड़ा हौसला है ना उस माँ का। अल्लाह रब्बुल इज्जत माँ से 70 गुना ज्यादा और अपने बंदों से मोहब्बत करने वाले, और जिस माँ के जरिए से इस बच्चे के या इस इंसान के जो है वो जरूरियात पूरी हो रही हैं, उस माँ को भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ही ने रिस्क दिया, राइट? जिस बाप के जरिए से इसकी सारी चीजें पूरी हो रही हैं, उसको भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ही ने रिस्क दिया, ठीक है? और खाली रिस्क नहीं दिया, बल्कि ये जो मोहब्बत उसके दिल में डाली वो भी अल्लाह ने डाली, जिस मोहब्बत की वजह से वो अपने बच्चे से प्यार कर रही। तो माँ का ख्याल रखना तो अल्लाह के नजदीक, अल्लाह के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारा अल्लाह ताला के साथ क्या एटीट्यूड होता है कि हम ना सिर्फ ये कि अल्लाह ताला के जो एक्सप्लिसिट हुक्म हैं हम उनको तोड़ रहे होते हैं, बल्कि हम अल्लाह ताला का इल्म होने के बावजूद, दीनदार लोग, क्लासें लेने वाले लोग, तफसीर पढ़ने वाले लोग, हदीस पढ़ने वाले लोग, वो अल्लाह का इल्म होने के बावजूद अल्लाह ताला को कैसे डिसरिगार्ड कर रहे होते हैं, और अल्लाह के मुकाबले में अल्लाह की जो छोटी 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 सी मखलूक है उस मखलूक को कितनी अहमियत दे रहे होते हैं। अल्लाह ताला की कोई हैसियत नहीं होती हमारी निगाहों के अंदर, और मखलूक की सारी हैसियत होती है, हत्ता कि हम मखलूक को खुश करने के लिए अल्लाह को नाराज करने की जो है वो कोई मसला नहीं होता हमारे लिए। कैसे मखलूक को हम कैसे खुश करते हैं, अल्लाह को नाराज कर दो, इसकी एक सबसे बड़ी मिसाल क्या होती है ये आप बताएंगे। हम मखलूक को खुश करते हैं अल्लाह ताला को सख्त नाराज करके, बल्कि सिर्फ नाराज कर भी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, सख्त नाराज करके, वो कैसे हम करते हैं ये वाला काम कि हम मखलूक को खुश करने की कोशिश करते हैं और अल्लाह को नाराज करते हैं इसके अंदर बेपर्दगी से जो है ना, हम अपने पेटू में छुपी जो मखलूक होती है ना, हम उसको खुश कर रहे होते हैं, ठीक है? चले, हम सवाल में आपको बता देते हैं कि हम दूसरी मखलूक को खुश करने की यहाँ पे बात कर रहे हैं। बेपर्दगी करने से कौन खुश होता है? बेपर्दगी करने से जो अपने अंदर छुपी हुई एक मखलूक है ना, जिसको नफ्स कहते हैं, वो खुश होता है, ठीक है? तो जवाब आपका वैसे गलत नहीं है, लेकिन अंदर वाली मखलूक खुश होती है। अभी हम जो सवाल कर रहे थे ना, वो हम बाहर वाली मखलूक की बात कर रहे हैं, यानी दूसरे इंसानों को खुश करते हैं और अल्लाह को नाराज करते हैं, कौन सवालों को ना करके। लोग क्या कहेंगे हम ये सोचते हैं, तो करते क्या हैं? चलिए, तो आपने सोचने का बता दिया ना, करते क्या हैं ये, जिससे कि हम मखलूक को खुश करने की भरपूर कोशिश करते हैं लेकिन अल्लाह को हम सख्त नाराज कर रहे होते हैं, क्या? और वो तकरीबन सब करते हैं, बल्कि नेशनल कैरेक्टरिस्टिक के तौर पे करते हैं। अच्छा, ये एक नया सिलसिला शुरू हो गया है, शादी करते हैं? नहीं, पता नहीं आपके सवाल के जवाब देंगे। शादी के मौके पे, शादी के मौके पे रिश्तेदार, जी ठीक है, नेशनल कैरेक्टरिस्टिक के लफ्ज से आपको बात समझ में आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह। झूठ बोलते हैं, ठीक है? ये जो झूठ बोलना है ना, इससे क्या होता है, इससे मखलूक जो है वो खुश हो जाती है कि अच्छा, इसने तो गलत काम किया ही नहीं था, गलत काम तो दूसरा कर रहा था, ठीक है ना? तो मखलूक बजाहिर खुश हो जाती है, वो भी सारी मखलूक खुश नहीं होती, अल्लाह ताला जिसको बता देते हैं सच क्या है वो तो फिर भी खुश नहीं होते लेकिन जो धोखा खा जाते हैं वो झूठ से खुश हो जाते हैं कि हाँ, वाकई वाकई इसने तो कोई गलत काम नहीं किया था, गलत काम तो दूसरे ने किया था, ठीक है? लेकिन अल्लाह अल्लाह भी खुश हो जाता है हमारे झूठ से कि हाँ, देखो 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 कितना इसको फिक्र पड़ गई है, हत्ता कि झूठ तक बोल दिया इसने, अपने गुनाह को छुपाने के लिए, अपनी गलती को छुपाने के लिए, ठीक है? अल्लाह ताला तो अल्लाह ताला तो सख्त नाराज होता है ना, इसलिए कि झूठ जो है ये स्ट्रेट जा करके अल्लाह ताला को चैलेंज कर रहा होता है, स्ट्रेट जा करके जाना, बिल्कुल जैसे कि गोया के नाउजबिल्ला कहते हैं ना कि गोया कि आप नाउजबिल्ला अल्लाह पे अटैक कर रहे हैं, अल्लाह पे अटैक कर रहे हैं, झूठ बोल करके बंदा अपने रब पे अटैक करने की नाकाम कोशिश करता है। ठीक है, क्या मतलब कि वो कहते हैं कि ये चीज ऐसे हुई थी, हालांकि अल्लाह ताला ने ऐसे नहीं करी थी ये चीज, ये कहता नहीं अल्लाह ने ऐसे करी थी, तो भाई ये तो डायरेक्ट अल्लाह ताला के साथ कन्फ्रंटेशन है, डायरेक्ट अल्लाह के साथ कन्फ्रंटेशन है झूठ बोलना। ठीक है, लेकिन हमें कोई परवाह ही नहीं होती इस बात की, और मखलूक के सामने अच्छा बनने के लिए हम धड़ल्ले के साथ झूठ बोलते, बेदरेग झूठ बोलते, लेकिन अल्लाह ताला का हौसला कितना बुलंद है, कितना बुलंद है कि अल्लाह ताला जो है ना वो इतने डायरेक्ट अटैक के ऊपर भी हमारे ऊपर काउंटर अटैक नहीं करते, वरना अगर अल्लाह ताला हमारे ऊपर काउंटर अटैक कर देना तो हमारा पता भी ना चले कि हम किधर गए, एनाइहिलेशन हो जाए हमारी पूरी की पूरी, सफाए हस्ती से मिट जाए हम अगर अल्लाह ताला हमारे ऊपर काउंटर अटैक कर दें जिस तरह से हम अल्लाह पे अटैक करते हैं झूठ बोल करके। ठीक है, लेकिन हमने किए गुना मगर उसने न की पकड़, कितने बड़े हैं हौसले परवरदिगार के भी, हम अपने अल्फाज को खुद नहीं सुनते हम बोल क्या रहे हैं, 4 मिनट पहले हमने क्या बात बोली थी उसी बात को जो है वो हम 4 मिनट के बाद जो है वो डिनाई कर देते हैं। ठीक है, तो हम कैसे झूठ बोलते हैं, अल्लाह ताला तो नहीं भूलते कि हमने 4 मिनट पहले या 4 महीने पहले या 4 साल पहले हमने क्या बातें करी थी और अब जो है वो हम किस तरीके से उनको डिनाई कर रहे हैं झूठ बोल बोल करके। और फिर अहमियत देना, हम कैसी जो है वो अल्लाह की मखलूक को इतनी अहमियत दे रहे होते हैं और अल्लाह ताला को हम कोई अहमियत नहीं दे रहे होते, सोचे ना जरा, माएं हैं ना इनमें से इस पूरी क्लास के अंदर कितनी माएं होंगी, 92 स्टूडेंट्स में से कितनी सारी माएं होंगी। ठीक है, आप अपनी बेटे की, अपनी बेटी की माँ है और आपने उसके लिए क्या क्या कुछ नहीं किया, और ये हम बात पहली दफा नहीं कर रहे, कई दफा कर चुके हैं, लेकिन आपका बेटा जो है वो आपकी तरफ देखे भी नहीं, और जो पड़ोस में आंटी रहती हैं, बराबर वाले घर में आंटी रहती हैं या कोई और हैं खातून जहां कहीं भी रहती हो, उनको अपनी माँ बना ले और उनकी जो है ना वो इज्जत भी करना शुरू कर दे और उनकी जो है वो आगे पीछे फिरना भी शुरू कर दे और उनको तोहफे तोहफे भी लाना शुरू कर दे और उनके साथ जो है वो राजो नियाज की बातें भी करना शुरू कर दे और अपना दिल भी जो है वो उन्हीं के सामने रखना शुरू कर दे, दिल खोलना शुरू कर दे उसके सामने, और आप देख रही हैं सब कुछ, जरा से दिल के कानों से सुनने की इस बात को कोशिश करें, आप ये सब कुछ देख रही हैं कि आपकी औलाद क्या कर रही है, आपके साथ कैसी बेरुखी कर रही है, और जो गैर है आपकी उसके साथ जो है ना वो किस किस्म का जो है वो रवैया उसने अच्छा बना करके रखा हुआ है, क्या गुजरेगी आपके दिल के ऊपर, क्या गुजरेगी आपके दिल के ऊपर। ठीक है, हम इससे भी ज्यादा बदतर मामला जो है वो अपने परवरदिगार के साथ करते हैं, और हमारा परवरदिगार हमें ऐसे देखता है कि वह हुआ युद्रकुल अबसार, कि वो हमारा हर तरीके से इहाता किया हुआ होता है, यानी हमारी कोई भी बात बैरूनी हो या अंदरूनी हो वो हमारे परवरदिगार से छुपी हुई नहीं होती, और वो अपनी तमाम नेमतें जो उसने आपको दी हुई होती हैं, हमें दी हुई होती हैं, बल्कि हमें उनके अंदर उसने डुबोया हुआ होता है, उन सबको जानता है और ये सब जानता है कि हम उसकी नेमतों के अंदर कैसे जो है वो एंजॉयमेंट वाली जिंदगी गुजार रहे होते हैं, लेकिन हम उसको कैसे रद्द कर रहे होते हैं और उसके गैर को, बल्कि उसके दुश्मनों को जो है वो कैसे इज्जत दे रहे हो, उसके दुश्मनों को कैसे इज्जत दे रहे हो। ठीक है, लेकिन फिर भी उसकी पकड़ नहीं आती, फिर भी वो हमारे ऊपर काउंटर अटैक नहीं करता, कितने बड़े हैं हौसले परवरदिगार के, जरा सोचे ना कभी अपने अल्लाह के बारे में इस तरीके से। तो झूठ बोलना जो है ना इसका तो तसव्वुर ही खत्म करने, अपने दिल से, अपने दिमाग से, अपनी जिंदगी में इसकी पॉसिबिलिटी ही खत्म कर देनी चाहिए। बड़ी अच्छी बात अल्लाह ताला ने दिल में डाली थी इस आजिज ने, बच्चों वाली जो क्लास थी सैटरडे को उसमें करी। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ऐसी शख्सियत थे कि उनको जैसे कि झूठ बोलना आता ही नहीं था, उनको झूठ बोलना आता ही नहीं था, ऐसी शख्सियत थे वो। अल्लाह से दुआ करनी चाहिए अल्लाह ताला हमें भी ऐसा बना दे कि हम झूठ बोलना भूल ही जाएं, तरीका ही भूल जाए कैसे झूठ बोला जाता है, क्योंकि ये झूठ इतना बड़ा बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला की लानत होती है काजिबीन के ऊपर, झूठ बोलने वालों के ऊपर। नअनतुल्लाह अलल काजिबीन, और अल्लाह की लानत का मतलब अल्लाह की रहमत दूर हो जाती है उनसे। हालांकि अल्लाह की रहमत ऐसी चीज है कि जिसने हर चीज का इहाता किया हुआ है। कितनी बड़ी है अल्लाह की रहमत, अल्लाह रहीम है, करीम है, रहमान है। और झूठा इंसान जो होता है उससे अल्लाह की रहमत दूर हो जाती है, तो कितना अजीम गुनाह होगा ये, हम तसव्वुर कर सकते। तो दूसरी आयत में लफ बसाए बसीरत की जमा है कि जिसके मानी अक्लो दानिश, यानी वो कुवत जिसके जरिए इंसान गैर महसूस चीजों का इल्म हासिल कर सकता है। बसाए से मुराद आयत में वो दलाइल और जराए हैं कि जिनसे इंसान हक और हकीकत को मालूम कर सके। मानी आयत के ये हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारे पास हक बीनी के जराए और वसाइल पहुंच चुके हैं, यानी कुरान आया, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, आपके मौजूदात आए, आप सल्लम के अखलाक मामलात व तालीमात मुशाहदे में आई, ये सब हक बीनी के जराए हैं। यानी ये सब वो दूरबीने हैं कि जिनसे के हक को हम आसानी के साथ देख सकते हैं, ठीक है, ये सारे जराए हैं हक को पहचानने के। तो जो शख्स इन जराए से काम लेकर साहिब बसीरत बन गया उसने अपना नफा हासिल कर लिया, और जो इन जराए को छोड़कर हक से अंधा रहा तो उसने अपना ही नुकसान किया, किसी दूसरे का नुकसान किया नहीं किया। जुम्मे के दरस में अगर जिसने सुना होगा तो उसने ये बात भी सुनी होगी कि जो लोग हम पे डिपेंडेंट नहीं है उनका तो जाहिर है हम नुकसान नहीं कर सकते, जब हम हक से आंखें बंद कर देते हैं जाहिर है हमारा नुकसान होगा, अब गैर लोगों का क्या नुकसान होगा। लेकिन अल्लाह का इंसाफ और अल्लाह का निजाम इतना प्रिसिशन बेस्ड है कि जिसका गुनाह है सिर्फ उसी को सजा मिलेगी, किसी दूसरे को सजा नहीं मिलेगी। ये इतना एक्यूरेट है ये निजाम कि इवन जो लोग हमारे ऊपर डिपेंडेंट होते हैं ना, हमारे गुनाह से इवन उनको गुनाह नहीं मिलता। ये नहीं हो सकता कि मां बाप का गुनाह जो है वो औलाद के नामे अमाल में लिख दिया जाए, नहीं, हरगिज हरगिज ऐसा नहीं होता। हालांकि औलाद मां बाप के ऊपर डिपेंडेंट होती है, मां बाप गुनाह कर रहे होते हैं उसकी वजह से हालात पैदा हो रहे होते हैं, जिसके हालात की वजह से औलाद के लिए भी मुश्किलात पैदा हो रही होती हैं, लेकिन गुनाह नहीं मिलता औलाद को अपने मां बाप का, गुनाह नहीं मिलता औलाद को अपने मां बाप का, ठीक है। तो नुकसान असल में क्या है, ये मसला यही है कि हमें बात समझ में ही नहीं आ रही है। ये कैसे हो सकता है जब माँ बाप गुनाह करते हैं तो औलाद जो है वो उनको तो सजा मिल रही होती है, हम ये कहते हैं ना जब माँ बाप गुनाह करते हैं तो औलाद को सजा मिल रही होती है, ये गलत डेफिनेशन है हमारी सजा की। ये जो सोच हमारे जहन में आ रही होती है ना कि माँ बाप गुनाह करते हैं तो औलाद को सजा मिल रही होती है, ये दरअसल लफ्ज़े सजा की गलत तारीफ है हमारी हमारे जहनों में, जिसकी वजह से हम ये सोच रहे हैं। लफ्ज़े सजा की गलत तारीफ है हमारे जहनों के अंदर, जिसकी वजह से हम ये सोचते हैं कि भाई ये तो गलती माँ बाप ने करी, सजा जो है वो बच्चों को मिल रही होती। नहीं, सजा की तारीफ क्या है, सजा की तारीफ जो है ना, डेफिनेशन वो है गुनाह, ठीक है, गुनाह। क्योंकि सजा जो है वो सिर्फ गुनाह पर मिलती है, सजा जो है वो सिर्फ गुनाह पर मिलती है। तो गुनाह सजा ये दोनों आपस में जॉइंट है, ये चिपकी हुई चीज है, ये दोनों आपस में गोया के क्या कहते हैं सिली हुई है। जैसे आप किसी कपड़े को किसी दूसरे कपड़े के साथ सी दें
तो अब आप उसको जुदा नहीं कर सकते ना, वो सीधी यानी वो जुड़ा हुआ है उसके साथ। ये है गुना और सजा, ऐसे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इसका ये भी मतलब है कि ये हो ही नहीं सकता क्योंकि गुना करे और उसको सजा ना मिले, ये नहीं हो सकता क्योंकि सजा तो गुना के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि सजा सिर्फ वही होती है जो कि गुनाह के ऊपर मिले, बाकी जो चीजें होती हैं ना, जो तकलीफें आती हैं, जो परेशानियां आती हैं, है ना, वो तो नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी में भी तकलीफें आई, नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी में भी परेशानियां आई, वो क्या थी, वो सजाएं नहीं थी, ठीक है ना, वो सजाएं नहीं थी। क्यों? इसलिए कि गुनाह नहीं था ना, नबी अलैहिस्सलाम ने गुनाह नहीं किया था। तो अब जो तकलीफ आ रही है, आजमाइश आ रही है, वो सजा है ही नहीं, वो क्या है, वो तो आजमाइश है भाई, वो तो आजमाइश है, वो सजा कोई थोड़ी है, ठीक है। तो जो औलाद की जिंदगी में परेशानियां आ रही होती हैं या तकलीफें आ रही होती हैं, हालांकि गुनाह तो माँ बाप ने किया, औलाद ने तो नहीं किया, तो वो औलाद को सजा नहीं मिल रही होती है। क्यों? इसलिए कि औलाद ने खुद कोई गुनाह नहीं किया, माँ बाप ने गुनाह किया, ठीक है, वो सजा नहीं मिल रही होती है औलाद को, ठीक है। तो वो तो आजमाइश होती है और उस आजमाइश में वो पूरा उतरता है, औलाद उसको जो है वो बुलंद दर्जात मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये जो फरमाया ना कि जो अंधा बना रहा ना, वमन अमिया फअलैहा, वो सिर्फ उसी को जो है वो सजा मिलेगी, ठीक है। तो इवन उसकी औलाद को भी सजा नहीं मिलती जो कि उससे इतनी ज्यादा क्लोज होती है और उसके ऊपर डिपेंडेंट होती है, उसके ऊपर दारोमदार होता है औलाद का, उसको सजा नहीं मिल सकती, ठीक है। अल्लाह ताला ने ये उसूल बनाया ही नहीं। अच्छा, उन्होंने क्या लिखा है कि आपने बताया था कि अगर औलाद मुश्किल में हो भी तो सजा भी वालिदैन की ही होती है, औलाद के दर्जात बुलंद होते हैं। हाँ, ये भी एक रुख है इस बात को देखने का कि औलाद जब तकलीफ में होती है ना, तो ये भी उन गुनाहगार वालिदों को वालिदैन को मजीद सजा ही मिल रही होती है असल में, अपनी औलाद को तकलीफ में देख करके वालिदैन को सजा मिल रही होती है, उनके अपने गुनाहों की वजह से ये हो रहा होता है। लेकिन औलाद के तो दर्जात बुलंद हो रहे होते हैं एज लॉन्ग एज औलाद ने खुद गुनाह नहीं किया, लेकिन जब औलाद बालिग हो गई, अब उसने खुद ही गुनाह करने शुरू कर दिए, अब उसको भी सजा मिलेगी, ठीक है। यूं थोड़ी है कि माँ बाप को तो मिलेगी औलाद को नहीं मिलेगी, भाई औलाद गुनाह करेगी तो औलाद को भी सजा मिलेगी, खलास। अच्छा, आखिर आयत में फरमाया कि मैं तुम्हारा निगरान नहीं हूं, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके जिम्मेदार नहीं कि लोगों को जबरदस्ती करके नाशायस्ता कामों से रोक ही दें जैसे निगरान और मुहाफिज का काम होता है, बल्कि रसूल का मनसब ही फरीदा सिर्फ अहकाम का पहुंचा देना और समझा देना है, फिर कोई अपने ख्यार से इख्तियार से उनका इत्तेबा करे या ना करे, ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है। जब अल्लाह का हुक्म आएगा सजा देने के लिए, तब नबी अलैहि सलाम सजा देंगे लोगों को, और अगर हुक्म नहीं आया तो भाई असल काम तो बस तबलीग, तबलीग का काम है, दावत का काम है, इल्म का काम है, ठीक है ना, दावत और तबलीग का काम ही इल्म का काम होता है। तो इल्म का काम जो है ना, ये नहीं होता कि बस वो मदरसे के अंदर बैठ करके जो है वो दर्स पढ़ाए चले चले जा रहे हैं, इल्म का काम सिर्फ ये नहीं होता, बल्कि इल्म का काम दावत तो तबलीग की शक्ल में भी होता है, ठीक है, और तज़किया नफ्स की शक्ल में भी इल्म का काम होता है, ठीक है। लेकिन ये उमूमी इल्म कह सकते हैं उसको, जो है वो खसूसी इल्म कह सकते हैं, लेकिन इल्म दोनों है, ये नहीं कि दावत तो तबलीग का काम नऊज़ बिल्लाह का इल्म से कोई ताल्लुक नहीं है, भाई ये तो जाहिल बंदा ही ये बात कर सकता है, इसको पता ही कुछ नहीं कि इन क्या चीज होती है। बहरहाल, तो तौहीद और रिसालत पर जो वाज़ह दलाइल पिछली आयत में बयान हो चुके हैं, तीसरी आयत में उनकी तरफ इशारा करके फरमाया गया कदालिक नुसर्रिफुल आयात, यानी हम इस तरह दलाइल को मुख्तलिफ पहलुओं से बयान करते हैं। इसके बाद फरमाया गया वली यकूलु दरस्ता वली नुबय्यिनहु लिक़ौमिन यालमून, जिसका हासिल यह है कि सारा हिदायत का सामान मौजज़ात और दलाइल बेमिसल किताब कुरान और एक उम्मी महज की जुबान मुबारक से ऐसे उलूम हक़ायक़ का इजहार जिनसे सारी दुनिया के फिलोसफर्स और हुकमा आजिज हैं, ऐसा बलीग कलाम जिसमें क़यामत तक आने वाले जिन और बशर को चैलेंज किया गया कि उसकी एक छोटी सी सूरत जैसा कलाम कोई बना सके तो लाए, और सारी दुनिया इससे आजिज है, ये सब हकबीनी का सामान ऐसा था कि हर हठ धर्म मुनकिर को भी
रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर गिर जाना चाहिए था, लेकिन जिन लोगों की तबीयत में जैद और कुजी थी वो ये कहने लगे कि दरअसल यानी ये उलूम तो आपने किसी से पढ़ लिए हैं। लेकिन इसके ऊपर काफी बात, काफी शाफी बात हो चुकी है। अच्छा, पीछे जो आप लोगों के मैसेजेस कुछ आए हुए थे, असल में जिस स्क्रीन पर मैं हूँ उस पर क्यों नहीं आ रहे मैसेजेस? उन्होंने लिखा था कि घर पे ऐसा कहते सुना, घर पे ऐसा कहते सुने हैं, अगर माँ बाप नेकी करें तो उसकी नेकी नस्लों तक जाती है, जैसे किसी नेमत का मिल जाना। अगर माँ बाप नेकी करें तो उनकी नेकी का असर जो है वो नस्लों तक जाता है। इसके बारे में पहले बात हो चुकी है वैसे तो काफी तफसील के साथ, लेकिन फिर से भी हम कर सकते हैं कि माँ बाप जो नेकियों का माहौल बनाते हैं ना, तो उस नेकियों के माहौल के जरिए से दो बातें हैं। एक तो ये कि अल्लाह ताला उनको सवाब के तौर पर ये भी सवाब देते हैं, नेक यानी माँ बाप नेकी करते हैं तो उनको सवाब मिलता है ना, ठीक है, अल्लाह ताला की रजा मिलती है, अल्लाह ताला की मदद मिलती है, अल्लाह ताला की तरफ से सवाब मिलता है। तो ये सवाब की एक सूरत ये भी होती है कि औलाद को भी अल्लाह ताला नेकी की तौफीक दे देते हैं, ठीक है। तो दिस इज वन एक्सप्लेनेशन, ये एक एक्सप्लेनेशन है इस बात की कि माँ बाप की नेकी की वजह से अल्लाह राजी होकर के औलाद को भी नेकी की तौफीक अता फरमा देते हैं, ठीक है। लेकिन इसकी जब हम इस रुख से, एक होता है ना भैया, एक ही बात को आप दो मुख्तलिफ रुखों से देख सकते हैं, दो मुख्तलिफ एंगल से एक ही बात को देख सकते हैं, एक ही चीज को एक आप इधर से देख रहे हैं तो वो कुछ थोड़ी सी डिफरेंट नजर आएगी, दूसरी तरफ से उसी बात को देख रहे हैं तो वो थोड़ी सी डिफरेंट नजर आएगी, ठीक है ना। तो अब औलाद जो है वो के ऊपर क्या असर होता है माँ बाप की नेकी उनका, तो एक तो असर ये एक रुख से देखें तो वो ये नजर आता है कि अल्लाह ताला खुश होकर के औलाद को नेकी की तौफीक दे देते हैं। लेकिन अगर दूसरे रुख से देखें, दूसरा रुख क्या, दूसरा रुख ये वाला रुख कि फमन अबसरा फली नफसी वमन अमिया फअलैहा, ये जो हम आयत की तफसीर पढ़ रहे हैं, इस रुख से देखें तो फिर जिसने बात सुनी तो उसका अपना फायदा है, तो इस रुख से देखें तो फिर जो माँ बाप नेकी कर रहे हैं तो उनका अपना फायदा है ना कि वो नेकी कर रहे हैं, औलाद को तो फायदा नहीं है, उनका अपना फायदा है कि वो नेकी कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर औलाद को क्यों फायदा हो रहा है भाई, माँ बाप की नेकी का फायदा औलाद को क्यों हो रहा है? तो माँ बाप को इनकी नेकी का फायदा औलाद को नहीं हो रहा, इस रुख से देखें तो ये एक्सप्लेनेशन बनेगी कि माँ बाप की नेकी का फायदा औलाद को नहीं हो रहा, बल्कि क्या हो रहा है कि अब औलाद के लिए ये आजमाइश बन रही है कि माँ बाप ने तो तुम्हारे लिए इतना नेकी का माहौल बना दिया, गुनाहों से हिफाजत का माहौल बना दिया, अब तुमने इसकी कदरदानी करी या नहीं करी, औलाद इसकी कदरदानी कर रही है कि नहीं कर रही है, ये आजमाइश है औलाद के लिए। नेकी का माहौल जो माँ बाप की नेकियों की वजह से घर में बना है, ये औलाद के लिए आजमाइश है। जिस तरह से माँ बाप के गुनाहों की वजह से घर के अंदर जो गुनाहों का माहौल बना था वो औलाद के लिए आजमाइश थी ना, उसी तरीके से जो नेकी का माहौल बना है माँ बाप की नेकी की वजह से वो भी औलाद के लिए आजमाइश ही है। उस आजमाइश में गुनाहों से बचना और इस आजमाइश में इस नेकी के माहौल की कदर करना, ये आजमाइश में कामयाबी होगी उस औलाद के लिए, ठीक है। तो जो औलाद माँ बाप की नेकियों की वजह से बने हुए नेक माहौल की कदर नहीं करती वो औलाद सजा की मुस्तहिक बन जाती है, क्योंकि ये उसका गुनाह होता है कि उसने कदर क्यों नहीं करी उस नेक माहौल की, वो सजाओं की मुस्तहिक बन जाती है, दुनिया में भी और आखिरत दोनों की सजाओं का मुस्तहिक बनती है, ठीक है। और जो गुनाहगार माँ बाप होते हैं उनकी वजह से जो गुनाहों का, मुश्किल का और मुसीबतों का माहौल घर के अंदर बना होता है, वो उस औलाद के लिए आजमाइश होती है कि वो उस आजमाइश के अंदर जो है वो सबर करे। और अल्लाह ताला जो हर एक का अल्लाह है, तो वो अपने अल्लाह से जुड़े, ठीक है, और जो है वो नेकी का रास्ता ढूंढे, तलाश करे, और जो है वो नेकी के ऊपर आए। ये तो नहीं कह सकती कि भाई मेरे माँ बाप गुनाहगार हैं तो मैं तो नेक बन ही नहीं सकती। नहीं, ये जवाब तो एक्सेप्ट ही नहीं किया जाएगा किसी भी औलाद से कि मेरे माँ बाप क्यों गुनाहगार हैं। वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला पेश कर देंगे, इनका बाप जो था वो तो सबसे बड़ा गुनाहगार था, ठीक है। सहाबा कराम की मिसालें अनगिनत हैं, सहाबा कराम के कितने कितने सहाबा थे कि जिनके माँ बाप जो थे वो बड़े बड़े मुशरिक और मुनकर और दुश्मन रसूल और ना जाने क्या क्या थे। और आज के दौर के अंदर इसकी अनगिनत मिसालें मौजूद हैं कि माँ बाप कोई नेकी वेकी की जिंदगी नहीं गुजारते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने मतलब औलाद जो है वो नेकी की जिंदगी गुजारी, ठीक है। तो ये तो एक्सक्यूज बिल्कुल भी नहीं चलेगा ना कि माँ बाप ने गुनाह किए थे तो मेरा क्या कसूर, ये तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा वाले उसमें। दूसरी तरीके से दूसरी तरफ भी है, ठीक है। तो दो रुख, एक रुख वही है कि अल्लाह ताला मेहरबानी फरमा देते हैं औलाद के जो नेकी की तौफीक, वो तकदीर वाली बात है, आगे अल्लाह ताला ने तौफीक अता फरमा दी, बस अल्लाह की मर्जी, अल्लाह ने तौफीक अता फरमा। लेकिन इसी बात को दूसरी तरह से देखेंगे तो ये बात बनेगी कि भाई उनकी नेकी भी जो है ना वो औलाद के लिए आजमाइश ही होती है। अच्छा, कितना टाइम हो गया? 2:45। अच्छा, तो यहां तक बात हो गई, अब कदमों पर गिर जान चाहते हैं जिन लोगों की तबीयत में। अच्छा, तो ये सब अल्लाह ताला ने अपने नबी अलैहिस्सलाम के जरिए से सारी हुज्जतें पूरी कर दी। आज के दौर में नबी अलैहिस्सलाम से बेशक बहुत का दौर जरूर है, लेकिन आज के दौर में भी इस कुरान को सच्चा प्रूफ करने के लिए अल्लाह ताला ने साइंसी दलाइल भी, बेशुमार साइंसी दलाइल जो है वो इंसान के सामने कर दिए, ठीक है। अब वो दलाइल सारे के सारे मौजूद हैं, कोई खुद ही आंखें बंद कर ले, वमन अमिया अलैहा है, वो आंखें बंद कर देनी, नहीं मुझे दलाइल सुनने ही नहीं है, मुझे दलाइल पढ़ने ही नहीं है, मुझे मेरे पास दलाइल का टाइम ही नहीं है कि मैं कुरान के बारे में मुझे यकीन हासिल हो जाए। मैं दलाइल अगर सुनता तो मुझे कुरान के बारे में यकीन हासिल हो जाता, लेकिन नहीं, बिल्कुल नो लिफ्ट। तो ये उसका अपना कसूर है, ठीक है। और जो अपने जो माँ बाप से उसको एक दीन मिला है, उस दीन को पुख्ता करने के लिए वो फिर दलाइल को सुनता है, दलाइल को पढ़ता है, दलाइल पे गौर करता है, तो उसका दीन जो है वो पुख्ता हो जाता है, यकीन हासिल हो जाता है, तो वो फिर फमन अक्सरा वाले नफसी, वो अपना फायदा कर जाते हैं, ठीक है। और जो अंधे बने रहते हैं, तो भाई दलाइल तो मौजूद हैं, अब आपको ये तो नहीं किया जाएगा ना कि आपका सर के अंदर जो है वो एक छेद किया जाएगा और फिर उसके अंदर दलाइल उंडेल दिए जाएंगे, ऐसा तो कोई नहीं करेगा ना। नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसा किया, राइट। तो जब नबी अलैहिस्सलाम ने लोगों को पकड़ पकड़ करके, उनका मुंह खोल करके उनके अंदर दलाइल घुसेड़े नहीं, तो उसी तरीके से आज भी कोई आपको पकड़ करके, आपका मुंह खोल के, आपका कान खोल करके उसके अंदर दलाइल घुसेड़ेगा तो नहीं ना। इसके लिए तो आपको खुद अपनी आंखें खोलनी पड़ेंगी ना, खुद अपने कान खोलने पड़ेंगे ना, खुद अपना दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा ना। तो जिसने खुद अपना दिमाग इस्तेमाल किया, आंखें खोली, कान खोले, उसका फायदा हो गया, और जिसने खुद अपने कानों को बंद कर लिया, आंखों को बंद कर लिया, दिमाग को सुला दिया इस तरफ से, उसका नुकसान हो गया, ठीक है। तो नथिंग हैज चेंज, बेसिकली वही सारा उसूल चल रहा है जो 1400 साल पहले भी चल रहा था, आज भी वही उसूल चल रहा है। क्या लिखा मैं? सूरह हजरत जी के सूरह काफ के बयान में था कि इंसान की पूरी जिंदगी दो ही हालतों में गुजरती है, सब्र और शुक्र। इन सब्र, या सब्र करे या शुक्र करे। अच्छा, और जैसे खानदानी शराफत हमारे आबाओ अजदाद के दीन पर होने की वजह से होती है, बेशक हम दीन पर नहीं चल रहे होते हैं। हाँ, वो आबाओ अजदाद नेक थे तो उनकी वजह से खानदानी शराफत का ठप्पा तो लग जाता है हमारे ऊपर, लेकिन उसकी वजह से हमें सवाब तो नहीं मिल रहा होता ना। सवाब तो हमें अपनी नेकियों की वजह से मिलेगा ना, खानदानी शराफत की वजह से हमें सवाब तो नहीं मिलने वाला है। दुनिया में एक लेबल लग जाता है, यहाँ भी ये शरीफ खानदान के लोग हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। अच्छा, साथ ही ये भी फरमा दिया, चलो बहुत देर हो जाएगी यहाँ पे, फिर वही बातें तो फिर बहुत हैं करने की, समझाने की, लेकिन टाइम की भी एक रिस्ट्रिक्शन होती है, तो हम यहाँ पे क्लास खत्म करते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद भी है और दुआ भी है कि अल्लाह ताला
हमें झूठ से ऐसी तौबा करने की तौफीक अता फरमा दे कि हमारा झूठ की तरफ ध्यान ही ना जाए, ये ऑप्शन ही हमारी जिंदगी से खत्म हो जाए, क्योंकि हम अपने परवरदिगार के साथ जो है ना वो लड़ाई नहीं लड़ना चाहते हैं, अपने परवरदिगार के ऊपर अटैक नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारी पर खैर नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो भी गलतियां कोताहियां हमसे हो चुकी हैं, अल्लाह ताला उनको माफ फरमा दें, उनके ऊपर हमें तौबा की तौफीक अता फरमा दें, और आइंदा की जिंदगी में सच और सुच के साथ बाकी ईमानदार जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमा दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलाम अलैकुम।